ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th चैप्टर, श्लोक संख्या 1-7 अभी फिलहाल। लेट्स सी आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते। सो इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, और इसीलिए सबसे छोटा अध्याय है, क्योंकि छोटे बहुत खोटे होते हैं। मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट चीज को बहुत प्रिसाइज बोला जाता है, लंबा चौड़ा घुमा फिरा के नहीं बोला जाता। मतलब अगर आप मायावादियों की बात सुनोगे, मायावादी शंकराचार्य के फॉलोअर्स अद्वैत, वो लोग कहेंगे छोटा इसलिए है क्योंकि भक्ति में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल है। निराकारवादी, बच्चों के लिए अपना थोड़ा जप करो, थोड़ा सुनो, प्रसाद लो, हो गया बस। मगर और इसलिए वो कहते हैं कि 13th, 14th, 15th चैप्टर इतने लंबे लंबे हैं, एक्सप्लेनेशन चाहिए, इंटेलिजेंट लोग समझ सकते हैं वो। और एक तरफ से लगता भी ऐसा है कि क्योंकि वो समझना भी मुश्किल है। इसीलिए अर्जुन यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये डिबेट बहुत टाइम से चलती आ रही है कि भाई कौन है ऊपर, भक्त ऊपर है या निराकार वाले ऊपर है, कौन बेटर है, निराकार की उपासना या भक्तों की उपासना, या दूसरे शब्दों में सगुण उपासना या निर्गुण उपासना, या साकार या निराकार। यह अभी भी है, पहले भी था, इसके आगे भी चलता रहेगा। सो एक कंक्लूजन होना चाहिए, नहीं क्या करें हम, कौन ठीक है। सो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेट्स सी। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो पहला श्लोक, उसके चले गए। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां परिउपासते ये चापि अक्षरम अवक्तम तेषां के योगवित्तमः। सो वैसे अर्जुन ने पूछा, जो आपके सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाएगा। सिंपल। सो अर्जुन ने इस डिबेट को सेटल करना चाहिए कि निराकार की उपासना बेटर है या साकार की, क्योंकि शास्त्र, मतलब आप कह सकते हो कि निराकार की उपासना तो आजकल के लोगों ने शुरू किया, नहीं ढोंगी लोगों ने, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में दिए निराकार की उपासना। हाँ, ये नहीं है शास्त्रों में कि निराकार आत्मा ही निराकार है, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं है, वो तो गलत ही सिद्धांत है। आत्मा परमात्मा हो जाएगी, आत्मा निराकार है, वो मायावाद है। ये बस ये शास्त्रों में लिखा है, हाँ भगवान निराकार भी है और साकार भी है, दोनों, दैट्स ओके, दोनों है। मगर क्वेश्चन ये है कि, और जो उपनिषद है, जैसे वेद है, अगर आप वेद पढ़ोगे ना सारे, तो उपनिषदों में निराकार की उपासना दी हुई है, उपनिषदों में इनफैक्ट निराकार की उपासना ही लिखी है, अगर बाहर से पढ़ा जाए तो। और जो भागवत पुराण है, भक्ति शास्त्र है, उसमें साकार सगुण की उपासना है। तो अर्जुन ने सीधा पूछ लिया, एवं सतत युक्ता ये, कि भगवान भक्तास्त्वां पर उपासते, भक्ता मतलब भक्त, भक्त जो आपकी उपासना करते हैं वो सतत युक्त है आपसे, सतत युक्त मतलब जुड़े हुए हैं, हमने कल पढ़ा था नित्य युक्त उपासते, नित्य युक्त है वो, या वो आपसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं वो योग अवित्तमा, कौन ज्यादा बड़ा योगी है, वो या ये? अक्षर मतलब होता है, अक्षर मतलब समझते शब्द का मतलब क्या है? हाँ एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे एक और मतलब है अक्षर का, वो बात सही है। शर अक्षर हमने बात की थी आत्माओं की, अक्षर मतलब मुक्त जीव, शर मतलब बद्ध जीव, शर मतलब जिस जो हाँ जो नष्ट हो जाता है। वैसे तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम नष्ट हो रहे हैं, तभी तो डर लगता है। इसलिए बद्ध जीव को शर कहते हैं। संसार में सारे लोग शर हैं, आध्यात्मिक जगत में सारे लोग अक्षर है, इसलिए उस जगत को एक उस जगत को अक्षर धाम भी बुलाता है। बट दिस इज अ प्रॉब्लम, वो अक्षर धाम इसलिए बुलाता है क्योंकि यहाँ पे जो अक्षर मतलब है उसका कुछ और मतलब है। अक्षर का एक और मतलब होता है जो कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, जो इंद्रियों से परे है। अक्षर का मतलब ये, अब ये कैसे मतलब आ गया इंद्रियों से परे, क्योंकि शर मतलब होता है जो इंद्रियों से नापा जा सकता है, उसको भी शर कहते हैं। जो इंद्रियों से नाप सकते हो उसको हम शर कहते हैं, नहीं लिमिटेड। शर का एक और मतलब हो गया लिमिटेड है, वो लिमिट है उसकी। अक्षर का मतलब है जिसकी कोई लिमिट, कोई लिमिट नहीं है भाई। लिमिट होगी तभी तो आप भैया, आप शर मतलब जो टूट जाता है, नहीं तोड़ोगे तभी ना, जब उसकी लिमिट पता लगेगी, कुछ डायमेंशन पता लगेगा तभी तो तोड़ फोड़ होगी। डायमेंशन ही नहीं होगा तो क्या तोड़ोगे? आप आकाश को तोड़ सकते हो, शुरू कहां से करोगे? सो इसलिए हमें नहीं पता। इसलिए अक्षर मतलब जो इंद्रियों से परे, अक्षर का मतलब ये होता है। सो भगवान के निराकार रूप को हम अक्षर बोलते हैं, क्योंकि निराकार रूप का कहां से शुरू है, क्या अंत है, पता ही नहीं कुछ, निराकार है बस। तो ज्ञानी लोग जब ध्यान लगाते हैं तो अपने मेडिटेशन में ज्योति देखते हैं, कहते नहीं ज्योति ज्योति स्वरूप, और उसका कोई ना आदि है ना अंत है, कुछ भी नहीं पता हमें, इसलिए उसको अक्षर कहा जाता है। और उसको अव्यक्त भी कहा जाता है, इस अक्षर को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि वो अप्रकट है, इन आंखों से हम नहीं देख सकते। भगवान के रूप को फिर भी हम इन आंखों से देख सकते हैं, उनके अर्च विग्रह के रूप में, और जब भगवान लीला करने आते हैं, मगर निराकार को कैसे देखोगे? निराकार को देख थोड़ा ना सकते हो। वैसे कुछ लोग कुछ जो जो लोग कहते हैं हमने निराकार के दर्शन किए, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, पता है? अगर निराकार है तो दर्शन कैसे किए? आप ये पूछ सकते हो वैसे उन लोगों से। तो कुछ लोग कहते हैं हमने निराकार रूप के दर्शन किए, जब निराकार है तो रूप का है, ये ज्योति रूप कहते हैं, नहीं कुछ लोग कहते हैं ज्योति रूप है भगवान, ये रूप क्या है जब ज्योति है जब? तो सो वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है। बट ज्ञानियों को समाधि में एक लाइट के दर्शन होते हैं, वाइट लाइट। एक अमेरिका में बहुत फेमस, अमेरिका में जो जितने भी न्यू एज गुरुज नहीं होते, वो लोग, उनको बड़ा मजा आता है निराकार। वो तो वो लोग तो एक गुरु है तो उसका नाम वाइट लाइट मैन है, वो सफेद लाइट की चर्चा करता है, अपने ध्यान लगाओ को सफेद लाइट दिखाई देगी। कुछ लोग लाल लाल लाइट पे जाते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी वाले, नहीं देखा शिव बाबा, वो लाल लाइट को कहते हैं, भगवान लाल लाइट है जिसका नाम शिव है, शिव बाबा। वो शिव जी नहीं है, वो शिव बाबा है, वो कोई कुछ और ही है। तो वो लाल लाइट, कुछ लोग लाल लाइट कहते हैं। हाँ सफेद और लाल लाइट तो सुना, और कोई लाइट सुना? कुछ सुना किसी ने? येलो, येलो लाइट शायद, येलो लाइट सुना, गोल्डन सुना है किसी, कोई कहता है कोई, मुझे नहीं पता। हाँ वैसे गोल्डन लाइट भी कहते हैं रामशरणम वाले, पता है रामशरणम, पता है संस्था आपको लोगों को? नहीं पता। तो वो लोग कहते हैं राम क्या है, उनके जो फाउंडर है उन्होंने कहा कि जब मैंने ध्यान लगाया तो मुझे गोल्डन लाइट दिखाई दी, वो राम है। सो ये सारे लोग क्या है, ये सारे लोग निराकारवादी हैं, को निराकार के एक लाइट के कुछ दर्शन हुए, दैट्स ऑल। सो वो लोग अपना लाइट का प्रीचिंग करते हैं, और हम लोग भगवान कृष्ण की प्रीचिंग करते हैं। सो कौन है ऊपर, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, क्या करें हम? अब भगवान आंसर कर रहे हैं इसका, अब हम भगवान का आंसर देखते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। आंसर इज
निराकार।
ओके, भगवान बता रहे, श्री भगवान उवाच। भगवान पता है, वैसे पता है, आप जितने भी अध्याय देखोगे ना, जैसे अर्जुन ने पूछा नहीं था 13 चैप्टर में कि भगवान क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ये क्या है, तो भगवान ने थोड़ा डिटेल में आंसर किया, नहीं घुमा फिरा के, कि पहले बताया प्रकृति क्या है, पुरुष, फिर आत्मा, परमात्मा, फिर धीरे धीरे डेवलप की थीम, देखा था ना 13 चैप्टर में। मगर यहां पे भगवान डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, कुछ घुमा फिरा नहीं रहे, सीधा भगवान का आंसर गया दूसरे श्लोक में। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो इमाम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मैं युक्त तमो मता। जो लोग अपने मन को मेरे सकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हो गया, खत्म हो गया चैप्टर, बस और कोई जरूरत ही नहीं है इसके आगे, फिनिश। भगवान ने अपना कंक्लूजन दे दिया, भगवान घुमा फिरा नहीं रहे, क्योंकि पहले टॉपिक ही इतना घुमाने फिराने वाला है, नहीं निराकार वाले घुमा रहे हैं लोगों को, वो हजार लॉजिक हैं उनके, ये हुए हैं। भगवान ने कहा भैया इस डिबेट को तो सीधा आंसर से डायरेक्ट एक तीर होगा और खत्म, इसलिए अध्याय छोटा है, क्योंकि भगवान ने खत्म कर दिया यहाँ पे अध्याय, दो श्लोक में अध्याय खत्म हो गया बस। अब इसके बाद क्या चल रहा है वो हम देखेंगे, मगर एक्चुअली फिनिश हो चुका है। कृष्णा कह रहे हैं मई आवेश मनो मैम, जो अपने मन को मुझ में आवेशित करता है, आवेशित, आवेश मतलब समझते हो क्या होता है, हाँ एक्चुअली आवेश ना एक टेक्निकल टर्म है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, स्थिर करता है, मतलब स्थिर करना एक श्री कहेंगे, मगर आवेश मतलब होता है अभिनिवेश। तो अभिनिवेश क्या होता है, अभिनिवेश होता है राग द्वेष आसक्ति अस्मिता अभिनिवेश, ये टेक्निकली टर्म है, प्रभुपाद भागवतम में कोट कर रहे हैं, भागवतम में भी कोट कर रहे हैं, संसार में भी अभिनिवेश होता है हमें, भगवान में भी अभिनिवेश है नहीं, चूज कर सकते हैं हम अभिनिवेश, आवेश कहाँ डालें, संसार में डालें या भगवान में डालें। संसार में कैसे होता है आवेश हमें आता है, पहले राग होता है किसी से, होता है नहीं होता है, और किसी से द्वेष होता है, वो द्वेष वाली हटा देते हैं, राग वाली ले लेते हैं, और फिर उसके बाद होता है आसक्ति, जिससे राग होता है उससे क्या होता है आसक्त हो जाते हैं, फिर अस्मिता, जब आसक्त हो जाते हैं तो मोहित हो जाते हैं, मोह आ जाता है, नहीं होता है, नहीं होता है, आसक्ति से मोह हो जाता है, नहीं बुद्धि मोहित हो जाती है, हम कुछ दिखाई नहीं देता फिर, और फिर उसके बाद एक स्टेज आती है अभिनिवेश, रोमियो जूलियट पागल हो गए, अब कुछ भी पता नहीं लग रहा, मरने मारने को तैयार है, वो अभिनिवेश होता है। तो इस तरह से संसार में ये अलग अलग स्टेजेस हैं लोगों की, कुछ लोग राग की स्टेज में, कुछ लोग राग द्वेष की स्टेज पे हैं, कुछ लोग आसक्ति की स्टेज पे हैं, कुछ लोग अस्मिता की स्टेज पे हैं, कुछ लोग अभिनिवेश, अभिनिवेश वाले तो पागल होते हैं, मतलब वो पागलपन भी हो सकता है, मैनियक हो सकते हैं, नहीं साइकोपैथ हो सकते हैं, वो ऐसा इस तरह से होता है एक्सट्रीम। तो वो ही चीज भगवान कह रहे हैं मेरे लिए करो, भगवान के लिए हम करते हैं, हम भी भगवान, हाँ यहाँ पे भी राग है, किसके लिए, किस लिए राग है, कृष्णा के लिए राग है, कृष्ण के भक्तों के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए नहीं, वही राग हमने वहां से उठा के यहाँ डाल दिया। यहाँ पे भी द्वेष है, किससे द्वेष है,
इंद्रियों से, इच्छाओं से, इच्छाओं से,
इंद्रियों से, इच्छाओं से नहीं, यहाँ पे द्वेष किससे है, उस हर चीज से द्वेष है जो भगवान की सेवा में रुकावट है, उस हर चीज से द्वेष है हमें, भोग से द्वेष है, भोग करने से द्वेष है, ये समझ लो बस, भोग सबसे बड़ी बुरी चीज है ना, जिसके से हम फंसते हैं, अपने स्वार्थ से द्वेष है हमें, वो गंदी चीज है नहीं, उससे द्वेष है। और फिर धीरे धीरे अगर हम इस तरह से राग द्वेष के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे ध्यान से, तो क्या हो जाएगा हमें, तो हमें हो जाएगा आसक्ति हो जाएगी भगवान से, पहले भगवान की सेवा से और फिर भगवान से, पहले सेवा से आसक्ति होती है ना, आप किसी का जॉब करते हो तो पहले जॉब से आप आसक्त होते हो, जॉब करते रहते हो फिर उसके मालिक से हो जाती है आसक्ति, तो उसी प्रकार पहले भगवान की सेवा से होती, सेवा अच्छी लगने लगेगी आपको, इसका मतलब एडवांस कर रहे हो, और फिर उसके बाद भगवान अच्छे लगने लगेंगे, और फिर उसके बाद अस्मिता, फिर आप मोहित हो जाओगे भगवान के रूप गुण और लीलाओं से। वो मोहित करने, मोहित समझते हो ना, मोहित मतलब कि भगवान के रूप गुण लीला आकर्षित करने लगेंगे, वो अस्मिता हो गई। और फिर अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब प्रेम, प्रेम हो गया, पागल हो गए, क्या था मीरा हो गई मगन बहुत फेमस था ना सॉन्ग, बचपन में बहुत चलता था, सभी सुनते थे आई थिंक। सो अगर वो वैसा समझना चाहो तो वैसा समझ लो, यू बिकम बैड, यू लेट लव। प्रेम का एक लक्षण है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद नेचुरल डिवोशन में लिख रहे हैं, प्रेम का लक्षण सिर्फ ये नहीं है कि मीरा हो गई, क्या है वो भूलिया, सिलागर लगन मीरा हो गई मगर वो तो चली चली चली, मतलब ऑफकोर्स प्रेम का ये हो सकता है लक्षण, मतलब वी डोंट से नहीं हो सकता, मतलब मेन लक्षण प्रेम का ये है कि प्रेमी, प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेमी, प्रेम मतलब रिस्क, प्रेम मतलब कि भक्त अब अपने भगवान के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर सकता है, वही तो प्रेम है। मेन चीज तो ये है ना, अदरवाइज प्रेम थोड़ा ना, अगर आप कौन सी मूवी बनती जिसके अंदर हीरो घूम रहा है लागी लगन, हीरोइन घूम रही है, जब समय आया तो हीरो कह रहा मैं ना जा रहा हूं, मैं नहीं मर सकता तेरे लिए, क्योंकि कोई मूवी बनेगी तो कॉमेडी बन जाएगी। हर मूवी में ऐसे ही होता है भाई, अल्टीमेट क्लाइमेक्स तो ये होता है, हीरो मरने को तैयार है, मरने मारने को आ गए, दैट्स ओके, नहीं दोनों, तब समय आता है कि ये लव स्टोरी है, वरना लव स्टोरी थोड़ी ना समझ आएगी कोई, वरना तो घूम रहे हैं ठीक है, सभी घूमते हैं, क्या हो गया। इसलिए प्रेम का अभिनिवेश का लक्षण है मरने मारने, जैसे भोगी मरने मारने को तैयार है, नहीं जिनको अभिनिवेश आ जाता है, पैसे में अभिनिवेश आ गया, मरने मारने को तैयार है, मेरे रास्ते में जो आएगा मैं खत्म कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, खून ही कर देते हैं, ऐसे यहां पर इसको प्रेम हो जाता है, वो भगवान के लिए सब रिस्क ले सकता है, भगवान के प्रचार के लिए और भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है वो, अगर 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 जरूरत पड़े तो मारने को भी तैयार है। जैसे अर्जुन, अर्जुन मारी तो रहा है, यही तो अर्जुन को शिक्षा, अर्जुन का मारने में क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, बेवकूफों को दिखाई दे रहा है अर्जुन मार रहा है, भक्तों को दिखाई दे रहा है कि अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान से प्रेम कर रहा है, वो प्रेम की एक अभिव्यक्ति है, उसको अभिनिवेश है भगवान से प्रेम में, तो हम प्रेम देख रहे हैं, बेवकूफ लोग लेते हैं लड़ाई, समझे फर्क, बहुत फर्क है, क्योंकि वो प्रेम से तो मार रहा है, मतलब ऑफ कोर्स प्रेम से नहीं मार रहा प्रेम भगवान से प्रेम है, तभी तो भगवान की बात मान के अपने सगे संबंधियों को, अपने गुरु को, अपने पिता तुल्य उनको उनको मार रहे हैं ना, वरना क्यों मारता वो। सो भक्तों की दृष्टि अलग है, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैया आवेश, आवेश करो अपने मन को मुझ में। ये टेक्निकल समझे, ये कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं है कि आपने पढ़ लिया आवेश, हाँ ठीक है हो गया आवेश, इस तरह से नहीं चलता, मतलब यू हैव टू रीड प्रॉपरली। मैया आवेश मनोय माम नित्य उक्त उपासते, और इस तरह से जो आवेशित मन करके मुझसे, जो जिनका मन आवेशित है वो मुझसे नित्य उक्त है, जिनको प्रेम है मुझसे वो मुझसे हमेशा जुड़े हुए हैं, जो प्रेम के रास्ते में, अभी हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं हमारा लक्ष्य है, तो हम भी उस रास्ते पे, हम भी भगवान से नित्य उक्त होना चाहते हैं। नहीं श्रद्धया परे उपेतास्ते ते में उक्त तम तमा, जिनकी श्रद्धा परम मुझमें होती है वो मुझसे युक्तम है, युक्तम कह रहे हैं भगवान, ये नहीं कह रहे कि निराकार वाले मुझसे युक्त नहीं है, उनको डिनाई भी नहीं कर रहे कि निराकार विकार है, ऐसा नहीं है, निराकार भगवान के, भगवान भगवान एक निराकार के रूप ही कह लो, मतलब निराकार के रूप में ही रहते हैं, मतलब निराकार भी एक भगवान का रूप है, साकार भी है, मगर भगवान कह रहे हैं डिवोटीज युक्तम है, युक्त युक्ततर और युक्ततम मोस्ट यूनाइटेड है मुझसे, मैं उनके हृदय में और वो मुझ में है, मैं वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते, मैं उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता, डिवोटीज मेरे ही है। ये तो डिवोटीज के लिए सेटल कर दिया भगवान ने, गुड। अशीला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, आप पढ़ना जाकर पॉपट में बाद में, कि भक्त निरंतर भगवान की सेवा में कार्यरत रहता है, नित्य उक्त उपास्यते का मतलब ये निकाल रहे हैं, जिसको प्रेम है, प्रेम का लक्षण बता रहे हैं, जिसका आवेश है, जिसको आवेश है वो सदैव नित्य युक्त भगवान की, युक्त मतलब कैसे युक्त रहेगा, भगवान की सेवा करता रहता है, और इस सेवा नित्य सेवा में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तभी प्रेम का मतलब रिस्क है, जैसे प्रभुपाद, क्योंकि हमेशा करना मुश्किल होता है ना, हमेशा करने में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कोई संसार कोई थोड़े ना कि आपको करने देगा, संसार तो डिजाइंड ही है रोकने के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे, हजार लोग कुछ बोलेंगे, कुछ रिस्क आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ठीक है डिवोटी करता रहता है। इसलिए कह रहे नित्य उक्त में मतलब इनहेरेंट मीनिंग है रिस्क का, प्रॉब्लम्स का, हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए वो भगवान का करता रहता है, क्यों, क्योंकि भगवान से प्रेम है उसको। ओके, प्रेम के लिए तो करेंगे ना, जैसे वो एग्जांपल नहीं दे रहा था, जैसे भोगी लोग नहीं करते, मतलब कितनी मेहनत करते हैं, करते नहीं करते हैं पूरी लाइफ, और इतनी प्रॉब्लम्स आती है, और किसके लिए करते हैं, अपने पर्स में उसके छोटी सी फोटो होगी, किसकी होगी, उसके वाइफ की, उसके बच्चे की, जब देखेगा तो ओह फिर चालू हो जाएगा, इसलिए करते रहते नहीं, यही है ना फैक्ट। जो लोग वॉर में नहीं जाते, वॉर में वो भी अपने पास रखते अपनी वाइफ बच्चों की फोटो, रोज रात को आके देखते रहते हैं, और फिर लड़ते रहते हैं, लड़ाई करते तो उनको नहीं याद आती रहती है, होता है नहीं होता है। सो उनको अभिनिवेश है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं, हमारी पॉकेट में भी फोटो होती है किसकी, बस जब भी डिवोटीज सेवा करते करते थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ नई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपना पर्स निकालते हैं, कृष्णा की फोटो देखते बंद करके चालू हो जाते हैं, इसको अभिनिवेश कहते हैं, समझे। सो डिवोटीज आर फाइटिंग फॉर कृष्णा, जैसे अर्जुन, तो हम सेवा भगवान के लिए करते हैं। सो इसलिए प्रभा कह रहे हैं नित्य का मतलब कह रहे हैं सेवा, समझे, सेवा करते हैं हमेशा भगवान की। ओके फाइन, अब कृष्णा कह रहे हैं अगले तीन श्लोकों में कि भाई अब जो निराकार की पूजा करता है उसका क्या है। खैर यहां पे भगवान ने श्लोक में क्लियर कर दिया कि मेरे भक्त मुझसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, निराकार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा मुझसे जुड़े नहीं हुए, वो कर रहे हैं मगर ज्यादा जुड़े नहीं हुए। मगर प्रॉब्लम पता है क्या, जब भी आप किसी चीज को बोलते हो ना, मगर इसमें भी एक डाउट रह जाएगा, अब एक डाउट है माइंड में। ठीक है कृष्णा, आपने बोला कि निराकार, आप बोल रहे हो कि भक्त ज्यादा ऊपर है निराकार से, तो मुझे समझ आ गया, मगर जो निराकार, मगर आपको ये भी बताना चाहिए मुझे कि निराकार करने में प्रॉब्लम क्या है नहीं, अभी आंसर अधूरा है। निराकार मत करो, निराकार से ऊपर साकार है, वो तो बात समझ आई, मगर निराकार में प्रॉब्लम क्या है जो आप कह रहे हो कि निराकार से ऊपर साकार है, इसलिए आंसर पूरा नहीं हुआ। नहीं, जैसे हम कहते हैं हमेशा भगवान को स्मरण करो, ये आंसर पूरा नहीं है, नहीं, आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि हमेशा भगवान को स्मरण करो और कभी भगवान को भूलो मत, तब आंसर पूरा होता है। हमेशा डेफिनेशन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, तब परिभाषा, ये परिभाषा बनाने की साइंस है। अन्वय व्यतिरेकश्च, अन्वय भी होता है और व्यतिरेक, उसी चीज को हम पॉजिटिव में भी बोलते हैं, उसी चीज को हम नेगेटिव में भी बोलते हैं, तब डेफिनेशन पूरी होती है किसी चीज की। जैसे मान लीजिए हम कहें कि भी इस प्रोग्राम में संडे में, सो संडे मॉर्निंग में आप क्लास सुनने आना, ये कंप्लीट है, ये एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। हाँ सुबह आना, अब आपको ठीक है मैं तो आऊंगा मगर मैं मिस कर दूंगा थर्सडे को, तो आपको कंप्लीट करने के लिए बोलना पड़ेगा हर सुबह क्लास में आना और कभी मिस मत करना, या हर सुबह आप क्लास में आना और सुबह कहीं मत जाना, तब कंप्लीट है, वरना बहाना मार दोगे मेरी तो एंगेजमेंट हो गई वहां, मैं तो बिजी हो गया। सो समझे, तो इसीलिए अभी आंसर पूरा नहीं है, मेरे भक्त सबसे ऊपर है क्योंकि उनमें क्वालिटी है, अभी उनमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, तब तो माइंड कन्विंस होगा, वरना कन्विंस नहीं होगा। सो इसलिए भगवान अब पूरा कर रहे हैं, इसलिए भगवान जो आंसर करते हैं ना उसमें सारे रूल्स अप्लाई करके आंसर करते हैं, परिभाषा के सबके मतलब क्लियर करना है ना, वरना डाउट रह जाएगा, अगर हम नहीं बोलोगे तो डाउट रहता है हमेशा। कृष्णा भगवान है और कोई भगवान नहीं है, ये ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा कृष्णा भगवान है तो आप कहोगे ठीक है इसका मतलब और भी भगवान है, मैं कन्विंस्ड हूं कृष्णा भगवान है, मगर शिव जी तो भगवान है, देवी भी भगवान है, तो पूरा बोलना पड़ेगा कृष्णा भगवान है और कोई देवी देवता भगवान नहीं है, बस दैट्स ऑल। ओके सो भगवान क्या कह रहे हैं, लेट्स सी थर्ड एंड फोर्थ। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परियुपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। कृष्णा कह रहे हैं ये मतलब क्या होता है, जो लोग निराकारवादियों के कह रहे हैं जो लोग, अब इससे हमें पता लगता है कि भगवान निराकार वादियों को थोड़ा सा अलग रख रहे हैं, है नहीं। जो लोग करते हैं, भक्त तो मेरे भक्त हैं, मगर जो लोग निराकार की उपासना करते हैं वो लोग कैसे हैं, भगवान ने एकदम से उसको थोड़ा सेपरेट कर दिया, नहीं पहले अपने आंसर में पहले ही शुरू में जो लोग करते हैं नहीं, तो आप आंसर करोगे तो ऐसे पता नहीं लग जाएगा। मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि भी आपके प्रोग्राम में कौन कौन आता है संडे प्रोग्राम में, तो हम बोलेंगे कि भी हमारे प्रोग्राम में सपोज आपके अनंत जितेंद्र पीयूष प्रभु ये लोग आते हैं और जो लोग संडे को आते हैं वो भी अच्छे हैं, तो मतलब आपको क्या ये हमारे ग्रुप के थे इंटरनल डिवोटी हैं वो लोग आते हैं अटेंड करते हैं, इसलिए ये श्लोक जे से शुरू हो रहा है, जे वैसे पंजाबी नहीं जे पंजाबी का ही वर्ड है, जो को जे ही तो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं जे जो को जय बोल देते हैं पंजाबी में, वैसे जय कर रहा है हरियाणा में भी तो है, और ये फिर नहीं हरियाणा में यूपी में कहा है, यूपी में नहीं नहीं। सो एनीवे तो ये संस्कृत से हिंदी आई है, तो वैसे ऊपर वाले श्लोक में देखो उसमें भी जय है, मई आवेश है मनो ये मतलब ये मतलब ये अजय मतलब मनिया वैश्य मन उसमें भी जो है, मगर वो जो भगवान बीच में लगा रहे, शुरू में नहीं बोला जा रहा है ना, बीच में बोलोगे तो फिर आप अलग नहीं रख रहे, हाँ वो तो ठीक है मुझको, हाँ मतलब वो फिर वो कोई वो उसमें कोई सेपरेट नहीं हो रहा, मतलब भाई अभी आपके प्रोग्राम में कौन आता है रियूष प्रभु आनंद जितेंद्र ये जो लोग ये जो आते हैं टाइम पे आ जाते हैं, मगर जो लोग बाद में जो लोग आते हैं बाकी तो वो इमीडिएटली वो सेपरेट हो गया, दैट्स अ सेपरेट थिंग, इसलिए भगवान ने पहले जे बोल दिया, मतलब ये बोल दिया जे क्या बोल रहा हूँ ये, तो जो लोग मतलब कह रहे हैं भाई निराकार वाली वादी मेरे इतने प्रिय नहीं है, हैं ठीक है ज्ञानी है वो लोग, प्रेमी नहीं है मुझे इतने प्रिय नहीं है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ आशीर्वाद है मेरा उनपे, बट ठीक है अभी दूर ही रहो उससे, अभी तुम मेरे घर नहीं आ सकते तुम, दैट्स ऑल। वो ये ऑफिशियल लोग हैं, भक्त घरेलू है, वो भगवान के घर जाते हैं गोलोक में वैकुंठ में, ये लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं अपने, निराकार की पूजा करो। ओके ये तो अक्षरम, अब उसके बाद क्या बोल रहे, कौन सा शब्द बोल रहे, तू बोल रहे हैं, तू का मतलब लेकिन, इससे तो बिल्कुल ही भगवान ने अलग कर दिया, लेकिन जो लोग ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, लेकिन बहुत बड़ा वर्ड है यहां पर, लेकिन से भगवान ने ना बहुत ही मतलब एक सड़ा दिया उन लोगों को, ये समझ लो है बिल्कुल ही अलग कर दिया, मतलब एक्चुअली ऐसी ऐसा लग रहा है कि भगवान को पसंद नहीं है वो लोग, पसंद नहीं है इतने, मतलब मेरे प्रोग्राम में अनंत आता है ये आते हैं लेकिन वो भी आता है ना बेइज्जती हो गई यार ये क्या मतलब है सर एक्चुअली भगवान ने तू बोल के एक तरह से ना उनकी बेइज्जती कर दी, ठीक है यार मतलब करते हैं बट मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं उनमें, वो ज्ञानी है वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि निराकार की उपासना कौन करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं ना, ज्ञानियों का अहंकार होता है, इसलिए भगवान को इतना इंटरेस्ट नहीं है। भगवान को सब चीज से प्रेम है, सब चीज भगवान करते हैं, मगर अहंकार से बहुत चीड़ है, यानी उन ऐसे लोग भगवान को अच्छे नहीं लगते। और ज्ञानी भोगी तो चलो फिर भी सही है, ज्ञानी और अहंकारी हो जाते हैं, वो भी भेद पड़ गए, तो वो तो और मतलब भगवान कह रहे ठीक है वो भोगी से तो बेटर है, वेद पढ़ रहे हैं, मगर मगर फिर भी आई डोंट लाइक देम क्योंकि अहंकारी है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, ठीक है करने दो बस उनको जो भी कर रहे हैं। इसलिए लेकिन बोल रहे हैं इस हर चीज में कुछ ना कुछ देयर इज अ पॉइंट भगवान के बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, जो अक्षर की उपासना करते हैं, अव्यक्त की उपासना करते हैं, सारे निराकार के ही शब्द हैं, अव्यक्त अक्षर जो इनकी उपासना करते हैं, सर्वत्र गम अचिंत्यम च, जो जो सर्वत्र गम मतलब हर जगह, जो हर जगह फैला हुआ है, अचिंत्य अचिंत्य मतलब चिंतन से परे है, कूटस्थम कूटस्थम मतलब कूटस्थम प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, हाँ अपरिवर्तित है, निराकार हमेशा वैसे ही रहता है, मतलब अपरिवर्तित कूटस्थम मतलब निराकार में कोई गुण नहीं है, कोई लीला नहीं है, कोई रूप नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, क्या करोगे, कोई परिवर्तन थोड़ा ना है। कृष्ण में तो रूप गुण है, रूप है, गुण है, लीला है, हर दिन अलग अलग भगवान की एक्टिविटीज हैं, कितनी सुंदर सुंदर, वो तो कूटस्थम है। अचलम ध्रुवम, अचल है और ध्रुव है, जो लोग इसकी उपासना करते हैं, सर्व सन्निवे इंद्रिय ग्रामम, कृष्णा कह रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों इनकी इनकी उपासना करने के लिए, निराकार की उपासना करने के लिए इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है। अब यहीं से भगवान ने शुरू कर, पहले तो भगवान ने बोल दिया कि देखो मैं उनसे प्रेम नहीं करता, पहली बात तो निराकार की उपासना में डिफेक्ट्स दिखा रहे हैं ना वो, देखो भी मेरे 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 को डियर नहीं है, पहली बात हो गया। दूसरी बात हो गया कि सन्नि में इंद्रिय ग्राम, उनको अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, कितना मुश्किल है, भक्तों को नहीं करने की जरूरत है क्योंकि भक्तों की तो भक्ति करने से अपने आप इंद्रियां वश में आ जाती है, प्रभुपाल लिख रहे हैं। अगर भक्ति के नियम फॉलो करो अच्छी तरह और सही से करो, इंद्रियां अलग से वश में करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आ जाएंगे, भगवान ही करेंगे। ऋषिकेश 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 न ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से जो इंद्रियों के स्वामी की पूजा करता है भगवान ही कंट्रोल कर लेते हैं उसकी इंद्री, भगवान अपने रूप और गुण और लीलाओं से उसके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। यहां पर तो कोई आकर्षण ही नहीं, यहां तो निराकार है, यहां क्या आकर्षण है, ना रूप है, ना गुण है, ना लीला है, तो उनको खुद ही अपनी इंद्रियों को पकड़ के रखना पड़ेगा, वो आकर्षण से बचा के रखना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने दूसरा ड्रॉबैक बोल दिया, वे इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, देख लो तो आधे लोग ऐसे ही भाग जाएंगे भगवान भगाना चाहते हैं लोगों को, ये जल्दी चले जाओ निराकार छोड़ के। अब ये कहने की बजाय कि छोड़ के चले जाओ, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं नहीं कि वो भाग जाए वहां से, तो भगाने टेक्निक होती है नहीं होती है। कई लोग हैं तो मैं कहूंगा भाई देखो हमारे इस प्रोग्राम में ये सब बैठे हैं लेकिन मिस्टर बेरा भी बैठे हैं लेकिन भाई ये क्या पीछे मतलब ये एक स्पीकर से इंडिकेशन हो गया कि भाई अगली बार से है नहीं सो, और फिर उसके बाद फिर मैं कह दूं कि भाई फिर इंद्रिय कंट्रोल करना भी मुश्किल है, तो ये तो एक और इंडिकेशन हो गई कि भाई नहीं भैया निराकार वाले तो नहीं, सबके लिए आसान है पर मिस्टर वेरा के लिए बहुत मुश्किल है यार, पीछे ही पड़ गया यार, मैं कल से नहीं आऊंगा। सो दैट्स अ पॉइंट, पॉइंट ये है कि भगवान ड्रॉबैक्स बता रहे हैं कि हम उसमें वेंचर ही ना करें, हम जाएं क्योंकि पता है क्या निराकार कॉन्सेप्ट वैसे पता है बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपको इतने, अब मतलब मॉडर्न में क्या होता है, लोग जाते हैं, लोग कहते हैं मेडिटेट करो, ओम बोलो और फिर बड़ा मजा आता है, नहीं उसमें एक अलग ही मजा है, अगर आप आता है नहीं आता है वो कुंडलिनी खोलो, वो नहीं होती कुंडलिनी चक्र वक्र, तो उसमें बहुत मजा आता है, फिर जब 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 चक्र खुल रहे होंगे तो वहां पे मशीन लगा देंगे आपकी, नहीं ईईजी मशीन लगाएंगे और फिर उसमें आपके वेव्स देखते रहेंगे अल्फा बीटा थीटा, वो लोग करते हैं सब, निराकार वाले करते हैं, भक्त नहीं करते सब, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, रामकृष्ण मिशन चले जाओ, वो चले जाओ वहां लगा लो के बैठ रहेंगे, फिर देखेंगे भी उसमें अल्फा वेव्स आ रही हैं, बीटा आ रही हैं, डेल्टा आ रही है तो सो रहा होगा मेडिटेशन के वक्त, अल्फा बीटा थीटा बीटा आ रही है तो हाँ भी उसकी मेडिटेशन बहुत डीप है, निराकार में लगा हुआ है, सो लाइक दैट वो चेक करते रहते हैं। अब उनको चेक तो वो तो ऐसे ही करेंगे ना, भक्तों को, भक्तों को ऐसे तो थोड़ी ना जरूरत है, क्योंकि भक्तों के लिए तो चेक करने वाले कौन है, कृष्ण ही है, उनके पास कोई है ही नहीं चेक करने वाला, वो खुद ही चेक करते रहेंगे अपने अंदर क्या चल रहा है, कुछ तो करेंगे वो। सो ये सारे जो फंड हैं वो करते रहते हैं, तो इंद्रिय कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही है, माइंड माइंड स्थिर हो रहा है नहीं हो रहा है वो ये देख रहे हैं, भी ब्रेन एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है वो तो इसमें पड़े है ना, निराकार मतलब कोई इंद्रिय कंट्रोल, माइंड डेड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, अब वो देखेंगे मशीन से भी ब्रेन में कितनी वेव्स आ रही है, जितनी कम वेव्स आ रही हैं, जितनी बीटा वेव्स आ रही हैं उतना पीसफुल है, उतनी हमारी मेडिटेशन सक्सेसफुल हो रही है उनका, वो तो ऐसे ही पता लगाएंगे ना, कैसे पता लगाएंगे, हम कैसे पता लगाएंगे हमारी मेडिटेशन सक्सेसफुल है, सिंपल है, हमारा पैरामीटर क्या है, उनका पैरामीटर तो ईजी है, हम कैसे पता लगाते हैं, पिछले श्लोक में बोला नहीं, नित्य योक्ता, जितनी सेवा भावना बढ़ रही है उतना हम भक्ति में बढ़ रहे हैं, काम खत्म, बस हमें थोड़ा ना वो ईजी लगानी है, हमें थोड़ा ना देखना मन स्थिर करना है, अगर आप भक्तों का ईजी कर लोगे ना तो और जबरदस्त वेव्स आ जाएंगे उसके अंदर वो बीटा वेव्स नहीं आने वाली, अच्छे भक्तों की अल्फा वेव्स इतनी तगड़ी आ जाएंगे, कहेंगे यार इसका तो माइंड और डिस्टर्ब हो रहा है, अरे ये क्या है, क्यों राहुल, और डिस्टर्ब माइंड लगेगा उनको देखना, जो अच्छे भक्तों के, जो नए भक्तों के उनकी उनकी बहुत पीसफुल आएगी, क्योंकि वो लोग तो चैंटिंग करते हैं ना नए डिवोटीज, हरे कृष्णा, और माइंड उनका बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, सो भी आते हैं अंदर, उनका बिल्कुल पीसफुल, कहेंगे यार ये है, जो अच्छे डिवोटीज जगह मतलब अगर कोई एडवांस डिवोटी आप करोगे हरे कृष्णा उसका माइंड तो पूरा सुपर एक्टिव चल रहा होगा, नाम आ रहा है, रूप आ रहे हैं, गुण आ रहे हैं, लीला आ रहे हैं, उसके माइंड में सेवा 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 भावना बढ़ रही है, वो तो कहेगा भैया ये क्या है, तो पूरा डिस्टर्ब्ड है माइंड अंदर, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, भक्ति में मन को स्थिर नहीं कर रहे, भक्ति में मन को हम और एक्टिव बना रहे हैं, निराकारवादियों को स्थिर करना, क्योंकि वो क्यों एक्टिव बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, ना कृष्ण है ना कुछ है, सब निराकार ही तो है, उनको तो योगा चित्तवृत्ति निरोध, उनको तो निरोध करना है, इसलिए जितने भी मेडिटेशन वाले बोलते नहीं है कि अपनी ओम बोलो, सीधे खड़े रहो, सीधा क्या कहते हैं, पीठ सीधी करो और हिलो मत और धीरे धीरे मन को शून्य बना दो, है नहीं, वो इंस्ट्रक्टर बोलता रहता है, तो अब तुम्हारा मन शांत हो रहा है, सब लोग बैठे रहेंगे, सांसें रुक, सांसें धीरे हो रही हैं, वो बोलते, यू हैव सीन दैट ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, वो बोलते रहते हैं फिर वो धीरे धीरे फिर 15 मिनट बाद फिर सबको उठाते हैं, मैंने भी किया है, फिर सबसे पूछते हैं हाँ कैसा एक्सपीरियंस हुआ, आपको कैसा लगा, टिपिकल उनका शेड्यूल है, टिपिकल प्रोटोटाइप शेड्यूल है, मैंने भी बहुत किया है, फिर सब कोई खड़े होकर कहेगा हाँ मुझे तो ऐसा लगा कि मैं धरती पे हूँ ही नहीं, आसमान में उड़ रहा हूँ, अजीब अजीब चीजें आएंगी, भगवान होंगे नहीं वहाँ, कोई उठ के कहेगा कि मुझे तो लगा कि मैं सारे दुखों से परे हो गया, सुपर इंटेलिजेंट बन गया हूँ, शक्तियाँ आ गई हैं, तो आई यूज़ टू डू टीएम पता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, पहले जब हम कॉलेज में थे वो करते थे, सो पहले तो मैं करता था काफ़ी, तो एक बार सेशन हुआ था, सेशन हुआ था तो उसमें किया उन्होंने, उवे सर थे, उवे ही थे ना, तो उन्होंने कराया था, तो हमने सबने किया, तो फिर यही टिपिकल यही चला, फिर उसके बाद सबसे पूछा कि भी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या है, तो वो ये बोल रहे थे मेरे को ऐसा लगा, उसी वक्त से मैंने कहा छोड़ दिया, मैंने कहा नॉनसेंस है यार, भगवान का है इसमें, मैंने पूछा भी उनसे भैया एक्सपीरियंस भगवान का है मुझे बताओ, उसको लग रहा है वो हाथी बन गया, उसको लग रहा है वो सुपरमैन बन गया, ये क्या हो रहा है, मतलब हाथी एक कहा था किसी ने, मुझे लग रहा था मेरे में हाथी ऐसी पावर आ गई, तो सर कहते हैं वाओ सो नाइस, ही वाज अ जर्मन, कहते हैं वेरी नाइस एक्सपीरियंस, गुड गुड, फिर मैंने उधर से पूछा सर, मैंने कहा सर भगवान का है इसमें, हो क्या रहा है ये, मतलब मुझे थोड़े ना हाथी बनना है या सुपर पावर चाहिए, हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं नहीं नहीं भगवान, उस टाइम क्या समझाते हैं निराकार साकार जो स्टूडेंट थे, तो बकवास है, नॉनसेंस है, नहीं, सो दैट्स टिपिकल, यहाँ पे आपको पता लगा ना सेवा भाव बढ़ रही है, सिंपल, कोई मशीन की कितना सिंपल है, नहीं तो भगवान ने बता दिया भाई वहां पे आपको मशीन्स भी चाहिए निराकार के लिए, बहुत बहुत महंगा सेटअप चाहिए आपको, पता कैसे लगाओगे? विद नो एक्सेप्शन 99.9% निराकार की उपासना करने वाले वो इसमें पड़े रहते हैं. यू आर टेलिंग 100% पड़े रहते हैं. मैंने करोड़ों लोगों को देखा है. वो मशीन जरूर होती है, क्योंकि वो पता कैसे लगाएंगे कि वो आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे हैं. अंदर वो झाक के देख नहीं सकता उसके कि निराकार की अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है. ब्रेन वेव से तो पता लगाएंगे, वो कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं. ECG कर लेंगे, हार्ट बीट कम हो रही है नहीं हो रही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी से बस चलता रहेगा होता रहेगा. सो यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस एंड दैट्स डिफिकल्ट. नहीं, उसको मापना भी मुश्किल है. इसलिए भगवान कह रहे हैं कि साधना की स्टेज में भी मुश्किल है निराकार की उपासना. अभी भगवान कह रहे हैं, हर प्रोसेस में एक साधन होता है एक फल होता है. नहीं, तो साधना की स्टेज में भी मुश्किल है, लो करना मुश्किल है और उसको मेजर करना भी मुश्किल है निराकार की उपासना को. वो भी नहीं कर पाओगे. हमारे एक सर थे, वो TM करते, वो सर्जरी के, वो अपना करते रहते थे और सोते रहते थे. और फिर उठने के बाद बोलते थे, वाओ क्या एक्सपीरियंस हुआ है. हमें बोलना पड़ता था, सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो होता हमारे सर ये फेल कर देंगे. मगर सबको पता है, 90% लोग सोते रहते हैं निराकार की जो मेडिटेशन करते हैं ना. आप चले जाओ साउथ इंडिया करने को, हमारी विवेकानंद रॉक पे गए हो? विवेकानंद रॉक, वहाँ विवेकानंद रॉक पे उन्होंने बना रखा है. आप जाओ, वहाँ विवेकानंद ने मेडिटेशन की थी, वहाँ पे सब जाके मेडिटेशन करते हैं और सब सोते रहते हैं. क्या कलयुग के लोगों के लिए निराकार उपासना नहीं? आप नहीं कर सकते, सोते रहोगे, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है. हम पहले इतने वीक हैं लोग. निराकार की उपासना करते थे, तो करते भी थे, तो वो लोग सत्युग उन युग में होते थे जहां पे पावर थी. और वैसे भी सिटीज में रहके तो हो ही नहीं सकती. आप माइंड को जीरो नहीं कर सकते सिटी में रहके, इम्पॉसिबल है. सो भगवान यहां पे कह रहे हैं इम्प्रैक्टिकल भी है. सेंसेस को कंट्रोल करना कह रहे हैं भैया इम्प्रैक्टिकल है, देख लो. सर्वत्र समबुद्धि, सब जगह समान बुद्धि रखना, दैट्स नॉट ईजी. समान बुद्धि कैसे रखोगे? नहीं रख सकते आज की एज में, तो बिल्कुल नहीं रख सकते. सत्युग में फिर भी रख सकते हो, सब अच्छे हैं, ठीक है. भक्ति में समान बुद्धि रखने की जरूरत नहीं. भक्ति में क्या है? राग और द्वेष है नहीं. हमें भगवान से राग है और भगवान की सेवा में जो भी रुकावट उससे द्वेष है. उसमें कोई समान बुद्धि नहीं चाहिए हमें. ते प्राप्नुवन्ति माम एव, भगवान कह रहे हैं वो भी मुझे प्राप्त करते हैं. वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं, मगर भगवान ने बोल दिया कि मुश्किल से करते हैं. इतना आसान नहीं है. कर जाएंगे मगर बहुत जन्मों बाद. आप पढ़ना पपट, अगर करेंगे भी तो बहुत जन्मों बाद. तो इसमें कौन सा श्लोक है गीता का कि ज्ञानी बहुत जन्मों बाद प्राप्त करते हैं? बहुनाम जन्मानामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, 7.19. कई जन्मों बाद ज्ञानी निराकार की उपासना करते 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 हैं. प्रभुपाद लिख रहे हैं इसका मतलब है कि ज्ञानी फालतू में टाइम वेस्ट करके, मुश्किल प्रोसेस करके भगवान को चाहते हैं. भक्ति आसान प्रोसेस है. हमने कब कहा नहीं आसान है? निराकार से तो बहुत आसान है. मगर अब निराकारवादी कहते हैं देखो इतना आसान प्रोसेस कर रहे हैं, हम तो मुश्किल करेंगे. क्यों करोगे अभी मुश्किल? फालतू में आवेल मुझे मार मारने वाली बात हो रही. प्रभुपाद एग्जांपल नहीं दे, प्रभुपाद कह रहे हैं अभी अगर लिफ्ट से आ सकते हो आप, सीढ़ी से आ सकते हो, तो कैसे जाओगे? ऑफ कोर्स, मतलब फोर्थ फ्लोर पे तो सीढ़ी से आ जाओगे. मैं सीढ़ी से जाऊंगा. आप जाओ, आप अमेरिका जाओ या इंडिया में भी आप जाओ, 100-story बिल्डिंग है. कितनी स्टोरीड है? 100 है. इंडिया में 100 कहाँ है? इंडिया में है ही नहीं 100. इंडिया में 100 हो ही नहीं सकते. वहां पे 100 स्टोरी. आप सीढ़ी से जाओगे लिफ्ट से जाओगे? सीढ़ी की सोचोगे भी नहीं आप. भाई मैं आधे घंटे वेट कर लूंगा नीचे सीढ़ी लिफ्ट की, लिफ्ट से जाने वाला हूं मैं. सो क्या, तो व्हाट डू यू डू विद दैट? ट्विन टावर वो तो चला गया. तो हाँ, तो पहले टूर के लिए जाते थे उसमें, ट्विन टावर में. हम भी गए थे जब मैं छोटा था, ट्विन टावर में, उसमें टूर के लिए ले आते थे. हमें भी ले गए उसमें लिफ्ट में ले जाने के लिए स्पेशली सबसे ऊपर. तो खड़े रहो लिफ्ट में आधे घंटे, तो मतलब 20 मिनट लगते थे ऊपर जाए. इतना बहुत बहुत बड़ा है और इतनी 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 बड़ी लिफ्ट थी रूम के बराबर. सोफे वोफे पे बैठ जाओ, अपने आराम से पढ़ते रहो, जाएगा ऊपर सबसे ऊपर जाओ, आप बादल ही बादल होता, कुछ दिखाई नहीं देता नीचे, दिखाने ले आते नीचे, कुछ पता नहीं लगता। तो वो ट्विन टावर है, अब तो चलो चला गया। सो हु वॉन्ट्स टू गो भाई वहां पे, वहां पे सीढ़ी होती नहीं प्रैक्टिकली, तो पीछे एक अलग से सीढ़ी थी, कोई कौन जाता सीढ़ी से। सो ऐसी बात है, अगर आप मतलब एक ट्विन टावर में ऊपर जाने के लिए कोई लिफ्ट की जरूरत है, तो भगवान कितने ऊपर है वहां पे उड़े ना सीढ़ी से जाओगे वैसे मैं सोच रहा था, वैसे रावण बेवकूफ था, वो सीढ़ी बना रहा था ना स्वर्ग तक, लिफ्ट क्यों नहीं बनाई उसने अगर सीढ़ी बना भी था स्वर्ग तक तो पैदल थोड़ी ना कोई जाता हो सकता है एक्सीलेटर एक्सीलेटर बना रहा हूँ, अगर लिफ्ट बनानी चाहिए उसको आइडियली, नहीं सीढ़ी क्यों बना रहा। सो वॉन्ट्स टू गो, सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए भगवान ने पूरा डिस्करेज कर दिया, वो मुझे कर लेते हैं प्राप्त मगर बीच में मर जाएंगे, वो लिफ्ट से जाओगे हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी को कई जन्म लगते हैं, मर जाते हैं करते करते, मर जाते हैं फिर पैदा होते हैं फिर मर जाते हैं, कंप्लीट ही नहीं होता, कैसे पहुंचोगे ऊपर, फिर मर जाते हैं कंप्लीट होता ही नहीं, मरते रहते हैं फिर पता नहीं किसी जन्म में वो मुझे प्राप्त करते हैं। और पता है कैसे प्राप्त करते हैं एंड में, कैसे करते हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर, हाँ एंड मरते रहते ऊपर पहुंच नहीं पाते। 100 बिल्डिंग की स्टोरी है, 10, 15, 20, 30 तक पहुंचते हैं, मरते जाते हैं बीच में, थक जाते हैं रुक जाते हैं, फिर 30वें फ्लोर पे उनको लिफ्ट वाला मिलता है भैया आ जा तू मर जाएगा वो थकते भाई तब वो पहुंचता है वो। सो प्रभुपाद लिखने सो कि ये जो निराकारवादी करते रहते हैं बहुत जन्मों बाद उनको साधु मिलता है, कोई भक्त समझाता है भाई नहीं होगा, नहीं कर सकता तू, कुछ भी कर ले भक्ति कर ले, अब तब उसको समझ आता है, बहु नाम जन्म मानामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तब वो मेरी शरण ले लेता थक हार हूर के, फिर वो भगवान को प्राप्त करता है। निराकार की उपासना वाले बिना भक्ति के भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ये निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनको भी आना पड़ेगा, तो फिर आप सीधा क्यों नहीं आ जाओ। नहीं, ये भगवान इस श्लोक में सबको समझा रहे हैं। और फिर भगवान अगले श्लोक में भगवान ने फिर तो पूरे डिस्करेज कर दिया, आने का गेट आउट, क्लेशो अधिकतर स्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुख देह भद्भिर्भाव्यते। कृष्णा ने बताया कि भी जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में भी डिफिकल्ट है निराकार की उपासना, भक्ति तो बहुत सुख सुखपूर्वक है ना, सुसुखम करता हूँ अभी हम, प्रैक्टिस में इतनी सुख सुखपूर्वक है, प्रसाद मिल रहा है, डांस कर रहे हो, अलग अलग चीजें हैं, इतना अच्छा है, कोई बुरा तो है नहीं। मगर भगवान कह रहे हैं कि क्लेशो अधिक तरस तेषाम, इसलिए उनको बहुत क्लेश होता है, क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ रहे ना, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, मन को रोकना है, इंद्रिय रोकना है, क्लेश है, क्लेश समझते हो ना, कष्ट तो है ही। चाहे वो कहते रहे कि निराकार, वैसे निराकार वादियों से पूछो क्यों कहेंगे हमें तो बहुत आनंद अनुभव होता है, ब्लिस वो कहते हैं, नहीं हमें तो आनंद अनुभव हो रहा है, ठीक है आनंद होगा मगर साथ साथ कष्ट भी है, भक्ति में हमेशा आनंद है, कष्ट है ही नहीं। हाँ कष्ट तब हो सकता है जब आप सही से भक्ति नहीं कर रहे, वो तब होता है, आप कहोगे भैया हमें भी तो कष्ट हो रहा है, इतनी मुश्किल है भक्ति, आप सही से प्रोसेस नहीं कर रहे तो कष्ट होगा ही, अगर सही से सिंसियरली प्रोसेस करोगे तो कोई कष्ट नहीं है, मगर वहां पे अगर प्रोसेस सिंसियरली भी करोगे तो उसमें वो डिजाइंड ही कष्ट पूर्वक है, डिजाइंड ही आप करोगे कैसे, वो है ही ऐसा प्रोसेस, क्या कर सकते हो आप। सो भक्ति तो सुसुखम है, कष्ट नहीं है, हाँ हो सकता है शुरू में थोड़ा क्लेश लगे भक्ति में, बिल्कुल नए डिवोटीज को थोड़ा मुश्किल लगे, मगर वैसे क्लेश नहीं है, और शुरू में भी क्लेश नहीं है, अगर शुरू में आप पूरी तरह भक्ति में इन्वॉल्व हो, सेवा इतनी होती है, सेवा में इतना बिजी रहता है डिवोटी पता ही नहीं लगता, सो क्लेश नहीं होता इसमें। क्लेशो अधिकतर, क्लेश भी कैसे है, अधिकतर है, भगवान ने वर्ड यूज किया अधिकतर, अधिक भी नहीं है अधिकतर है। बहुत निराकार की उपासना करने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा, सिटी में नहीं कर सकते, ध्यान करो, मन को स्थिर करना है, मतलब आप जंगल में रात को कैसे करोगे, एक कुत्ते की आवाज आएगी आप तो वैसे ही डर जाओगे वो क्या मन क्या स्थिर रहेगा वो, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी. मतलब इसको शुरू करना ही मुश्किल है. प्रैक्टिस करते हैं तो है ही मुश्किल, शुरू ही नहीं कर पाओगे. शुरू कैसे करोगे आप? इतने बड़े बड़े ज्ञान नहीं चले आते गुफाओं में बैठ के ध्यान लगाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आप देखते नहीं हो? हम तो सोच भी नहीं सकते शुरू करने की, है कैसे करोगे आप? इसलिए कृष्ण कह रहे हैं क्लेशो अधिकतर इसलिए कह रहे हैं कि शुरुआत में भी क्लेश है, साधना करते हुए भी क्लेश है, अधिकतर दोनों में क्लेश है. बस तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम, क्योंकि अव्यक्त से आसक्त होना बहुत मुश्किल है. निराकार पे ध्यान लगाना, निराकार पे ध्यान क्या लगाओगे? पहली बात आपको बोलो निराकार पे ध्यान लगाओ, क्या लगाओगे? ना रूप है, ना गुण है, ना लीला है. सो निराकार पे ध्यान लगाने का मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब निराकार पे ध्यान लगाने का मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है मन को खाली करना. समझ गए नहीं समझ गए? उनकी जैसे हमें बोलो कृष्ण पे ध्यान लगाना है, तो हमारा मतलब क्या है? हम आंख बंद करके किस पे ध्यान लगाते हैं? कृष्ण के रूप गुण लीला. उनसे बोलो निराकार, उनके टीचर कहेगा निराकार पे ध्यान लगाओ, तो कहेगा भी करूं मैं क्या माइंड में क्या करूं? तो कहते हैं इसका मतलब यह है कि कुछ मत सोचो, यू अंडरस्टैंड. तो भगवान कह रहे हैं कि भाई फिर तो आसक्ति का कोई क्वेश्चन ही नहीं है जब आप निराकार पे ध्यान लगाने, निराकार ही नहीं है वहां पर, निराकार है ही नहीं, तो आसक्त क्या हो गए? वो तो मन को खाली कर रहे हो अभी आप. यू गॉट गॉट ना पॉइंट? तो बिल्कुल अजीब, उनकी साधना बिल्कुल अजीब सी है. थ्योरी में शायद निराकार की उपासना है, साधना में निराकार है ही नहीं. ये बहुत मिस्ट्री है. आप किसी भी निराकारवादी से पूछ लो कि भाई तुम जब मेडिटेशन करते हो तो किस पे ध्यान लगाते हो? तो निराकार पे ध्यान लगाते हो. अगर वो कहेगा हाँ तो बोलो फिर, तो फिर बोलो तो उससे पूछो फिर तुम्हारे निराकार कैसे हैं जो तुम ध्यान लगाते हो? तो उसके पास कोई आंसर नहीं है. कैसे है क्या पता ही नहीं. अगर वो बोलेगा नहीं तो बोलोगे फिर निराकार पे क्या ध्यान लगा रहे हो तुम? सो वो कहते हैं मन खाली हो जाएगा तब निराकार अपने आप प्रकट होगा. अभी मन खाली करो. सो आसक्ति का कोई क्वेश्चन नहीं है. और फिर अब भगवान बता रहे हैं कि उसका जो फल है, शुरुआत करना भी मुश्किल है, साधन भी क्लेश है, फल में भी क्लेश है, सब में ही प्रॉब्लम है. अव्यक्त ही गतिर दुख है, उसकी गति भी दुखपूर्ण है. गति मतलब फल, फल फल फल, गति गति मतलब गोल, जो मिलेगा वो भी दुखपूर्ण है. अब वो कैसे दुखपूर्ण है? पॉइंट है वो कैसे दुखपूर्ण है. उसमें भगवान अगला शब्द बोल रहे हैं देह बदभिर अवाप्यते. देहवत विप्राप्ति होता है देहधारियों के द्वारा, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव. जो जिनके जिनका शरीर है ना, जो हम देहधारी हैं, इनके लिए हमारे लिए ये जो निराकार है बहुत दुखपूर्ण है. गति इसकी दुख दुखपूर्ण है. क्यों दुखपूर्ण है? कोई बता सकता है क्यों दुखपूर्ण है? जो हम देहधारी हैं हमारे लिए निराकार की उपासना या निराकार करना बहुत दुखपूर्ण है. दुखपूर्ण क्यों कह रहे हैं? क्लेश तो समझ आते, दुखपूर्ण स्वरूप क्या मतलब? वो तो शरीर है ना, ये तो शरीर की बात कर रहे हैं.
आत्मा के स्वरूप और नेचर,
मगर ये तो शरीर की बात कर रहे हैं ना.
देह से तो सारी प्रॉब्लम,
इंद्रियों को कंट्रोल करना, देह को कष्ट देना, भूख लगे खाना
नहीं खा रहे हो. एक्चुअली इसमें एक ट्रिक है. जिसके पास शरीर है ना, उनको अव्यक्त की उपासना बहुत दुखपूर्ण लगती है. मतलब फल, जो निराकारवादी हैं, जब वो परफेक्ट हो जाएंगे तो उनको किसके दर्शन होंगे? निराकार. तो उनकी गति का है. अब वो दर्शन होंगे वो मुझे नहीं पता क्या होंगे, बट एक लाइट दिखाई देगी, व्हाइट लाइट या जो भी है. तो उनकी गति निराकार में. मगर जिनको, जैसे हम लोग हैं ना, जिनको शरीर मिला है, उनको निराकार प्राप्त होकर बहुत दुख होगा, जो बुद्धिमान है. क्यों? क्यों होगा वो? इसलिए दुख होगा, इस बात का जरूर दुख होगा कि जो शरीर है, जो भगवान की सेवा के लिए उपकरण है, वो वेस्ट हो गया. है नहीं? सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो? ध्यान से सोचो. वो तो ये तो वेस्ट हो गया ना. ये तो ये पूरी शरीर किसके लिए? सेवा के लिए बना है. अब निराकार पे ध्यान लगा के शरीर वेस्ट कर दिया. कोई फायदा नहीं हो रहा, सेवा में लग ही नहीं रहा, ना संसार की कोई चीज लग रही है. इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब निराकार जो फल मिल रहा था उनको, निराकार वालों को, जो बुद्धिमान लोग, उनको बड़ा दुख होता है. ये मैं कहाँ आ गया यार? है नहीं? मतलब आप चले थे भगवान को जानने के लिए, मंदिर की जगह आप कहाँ पहुंच गए? मंदिर की जगह आप पहुंच गए कहीं रेगिस्तान में, गलत जगह, तो वो कहाँ गए यार मैं, मतलब रेगिस्तानी, सपोज आप मंदिर की जगह पहुंच गए, रेगिस्तान तो गंदी जगह है, आप माउंटेन में पहुंच गए कहीं हिमालय में ठंड में, सब कुछ गार्डन वार्डन सब कुछ है, अच्छा है बहुत, कहाँ गए यार, मंदिर जाना था वहां की सेवा करनी थी, यहाँ सब कुछ अच्छा है मगर सेवा क्या है। तो ऐसी निराकार जब मिल जाता है ना तब भी बहुत दुख होता है जिनका शरीर है, क्योंकि अच्छा है बड़ा मजा आता है मगर सेवा का है, शरीर मेरा कोई सेवा में नहीं लग रहा, संसार की चीजें भी भगवान की सेवा के लिए है ना, वो भी वेस्ट हो गए, ये भी हो गया, हम निराकार में हो गए, इसलिए गति भी उसकी दुखपूर्ण है, देहवत मेरा वाप्यते। सो हाँ तो भक्तों के तो कंपेयर कर रहे हैं इससे, भक्तों के तो कंपेयर कर रहे हैं, भक्तों को तो लगेगा यार ये क्या है, इसलिए भक्त कभी भी निराकार की उपासना चूज नहीं करेंगे। अगर भगवान ये इसलिए कह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन दी जाए, ज्ञानी कहें भी देखो बच्चा मेरे पास आओ, ये गिफ्ट कह रहे हैं क्लेश पूर्ण है ना तुम्हारी साधना, मन को वश में करना, आओ मैं हाथ रखता हूं और निराकार, ऐसे ही करते हैं ना लोग, कुंडली जागृत कर देते हैं, टच टच वो शक्तिपात सुना है, शक्तिपात सुना है, ये बंगाल में बड़ा फेमस है शक्तिपात, यहाँ भी है। सो वो बस वो अपना स्पेशल स्पेशल वो होगा, पैसे लेंगे, स्पेशल क्लास होगी, उसमें छुएंगे और उसकी उसको झटका लगेगा और कुंडली जागृत हो गई और निराकार पहुंच गए निराकार। कहते हैं अभी देखो क्लेश कलयुग में हमने ये कंसेशन है कि गुरु सीधा करा देते हैं, भगवान कह रहे हैं क्लेश पूर्ण है, तो हम भगवान की बात थोड़ा ना कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे, आप देख रहे हो कैसे कैसे क्या, वो भी बहुत तिगड़ा माजी लोग हैं वो, आप गीता समझ के आप कहोगे अब तो मैं बच गया निराकार वालों से, अब क्लास में आओगे वो कहेंगे देखो हम तो मानते हैं क्लेश पूर्ण है, हमने कब कहा नहीं है, हम आपको शक्तिपात दे के सीधा आपकी कुंडली जागरण कर देंगे, ऐसे है नहीं कुंडली जागरण कर देते हैं, है नहीं बोलते नहीं सहज योग और ये सब कुंडली जागरण कर देते हैं, एक सेकंड में हो गई आप निराकार तक पहुंच गए, तब आप चूज करोगे, अगर वो निराकार तक पहुंचा भी दें आपको बिना किसी के क्लेश के तब भी हम चूज नहीं करेंगे, क्योंकि भक्तों को निराकार निराकार तक निराकार पहुंच जाए, निराकार ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, हम पहुंच गए सबको अच्छा है मगर प्रॉब्लम ये है कि सेवा उसमें सेवा नहीं, हम सेवा के बिना कैसे रहेंगे। भगवान ने शरीर और शरीर बनाया तो शरीर भगवान ने हमने दिया था अपने सेवा के लिए, हमने वो वेस्ट कर दिया भगवान का दिया हुआ शरीर, तो फिर डिवोटी तो नहीं चूज करेगा, डिवोटी कहेगा ठीक है यार आप एक सेकंड शक्तिपात कर दोगे फिर भी नहीं मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं गति ही दुखा, गति बहुत दुखपूर्ण है, इसलिए निराकार है बेकार, बस अल्टीमेटली हम चूज नहीं करते, शुरुआत भी क्लेश है, साधना भी क्लेश है, गति भी दुखपूर्ण है, सब कुछ ही दुखपूर्ण है। और अब भगवान छठे और सातवें श्लोक में कंक्लूड कर रहे हैं एक एक सेक्शन, और ये कह रहे हैं कि भी देखो वो तो क्लेशपूर्ण है ही, भगवान ने अपना भक्त बोल भक्त के, अब वैसे तो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं खत्म हो गया, नहीं हो गया, कॉन्ट्रास्ट कर दिया भगवान ने, भक्त क्या करता है और निराकार क्या है, उसमें ड्रॉबैक क्या है, उसमें फायदा क्या है, मगर इसके बाद भगवान मगर हरे कृष्ण मगर इसके बाद भगवान अपना भगवान अपने डिवोटीज को एनकरेज कर रहे हैं, निराकार के लिए डिस्करेज कर दिया, डिवोटीज को अब एनकरेजमेंट दे रहे हैं भगवान, नहीं अब तुम मेरे पास आओ, कोई वो बहुत मुश्किल है और मेरी सेवा बहुत इजी है, ये तू सर्वाणी करवानी मई संन्यास से मत परा अनन्य वयोगे ना माम ध्यायंत उपासते, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, ये तू सर्वाणी करवानी, सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके संन्यास से मत परा, अपनी अपनी इच्छाओं को मुझसे जोड़कर सारे काम कर रहे हैं किसके लिए, मेरे आनंद के लिए, संन्यास से मतलब मेरे संन्यास से मत परा, अपनी इच्छाओं को मुझ पे छोड़कर मत परा, मेरे लिए करके, जो अपने सारे काम मुझे आनंद देने के लिए करता है उसको अपना मन रोकने की जरूरत नहीं है, इंद्रिय कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, इंद्रिय चलाओ बल्कि उल्टा, कॉन्ट्रास्ट भी दे रहे हैं निराकार की, बिल्कुल यहाँ पे वो वहां पे कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, काम करो इंद्रिय चलाओ मगर किसके लिए करो, मुझे आनंद देने के लिए, अनन्य योगे ना, वो अनन्य तरीके से भक्ति योग करता है और माम ध्यान तो उपासते, और मेरा ध्यान निरंतर करता है मेरे रूप गुण लीला का, फिनिश। सेवा करते करते उसको मेरा ध्यान होता है। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसको समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करता हूं। समुद्धरता मतलब कंप्लीट, पूरी तरह उसको उद्धार कर दूंगा, अविद्या से भी, संसार से भी, जन्म मृत्यु से भी। मृत्यु संसार सागर, मृत्यु मृत्यु के सागर से, बहुत बड़ा टर्म है मृत्यु का सागर। अगर आप ध्यान से सोचोगे, इस संसार का ना मृत्यु सागर ही है, वो एसी में बैठ के पता नहीं लगता, चिंता मत करो, वो नहीं पता लगेगा आपको। वो मैं चलाया मगर ऐसे समझ नहीं आएगा, मृत्यु सागर दिस इज अ डिफरेंट टर्म। यहाँ पे आप संस्कृत वर्ड सोच सकते हो, वैसे नहीं समझ पाओगे। ये समझ आ गया मृत्यु सागर, तो आप भक्ति छोड़ ही नहीं सकते आप, मतलब 24 घंटे आप नाम ही लेते रहोगे, भैया फंस गया मैं मृत्यु सागर में। मगर भगवान कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत ऐसी से हो सकती है, मगर मैं तुम्हें निकाल लूंगा यहाँ से, चिंता मत करो। शुरुआत तो वहीं से करोगे, मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग करके तुम्हें मृत्यु सागर से बाहर निकाल ही लूंगा, तुम्हें रियलाइज करा दूंगा, मैं रियलाइज कराऊंगा तुम्हें कि मृत्यु सागर है, चिंता मत करो। चिंता मत करो, मैं कराऊंगा रियलाइज। अब वो कैसे कराएंगे वो भगवान जाने, जिसको नहीं हो रहा उसके लिए फिर कुछ प्लानिंग होगी, बट भगवान निकालेंगे, रिलाइज करा के निकालेंगे। ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकाल दें आपको हो गए भगवान ऐसे ही मुझे निकाल दिया मैं वापस जाऊंगा, तो रिलाइज करा के निकालेंगे। अब वो भगवान को और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके कर्मों को यूज करके आपको रिलाइज करा देंगे, वो कुछ नहीं करते, आपके जो गंदे कर्म है ना उसी से आपको रियलाइज करा देंगे कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है संसार में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा उनको। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है ना, मतलब उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। भवामी ना चिरात पार्थ मैया बेशत चेतस, और चिरात पार्थ मतलब ज्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत ही जल्दी मैं उसको, भवामी मतलब मैं, अहम मतलब मैं, देख रहे हो आप बार बार भगवान बोल रहे हैं, भवामी मतलब बार बार बोल रहे हैं मैं कराऊंगा, मैं मैया, फिर मैं आ गया, मुझे मैया आवश्यकते थे शाम। इस श्लोक में भगवान ने बार बार मैं बोला है, नहीं पिछले श्लोक में मई माम, भगवान कह रहे हैं भक्तों को मैं पर्सनली इस संसार से बाहर निकाल, निराकारवादी को तो अपने ही बल पे चल रहे हैं वो, यहाँ पे मैं उठा रहा हूं उनको, बस शर्त यह है कि हमें भगवान को पकड़े रखना है बस। अगर हम ही छोड़ के भाग जाएंगे तब नहीं हो सकता, तो चैंटिंग के वक्त हम छोड़ के चले आते हैं, पता है चैंटिंग अदा का मन क्यों भागता है, इसलिए नहीं भागता क्योंकि वो भागना आता है, आप ही छोड़ रहे हो भगवान को इसलिए भाग रहे हैं। आप इंजॉय करना चाहते हो, आप चूज कर रहे हो अपने माइंड में कि मैं कृष्ण को छोड़ूंगा इसलिए भाग जाएगा। अगर आप चूज नहीं करोगे ना तो भाग ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका अभी मैं चैंटिंग कर रहा हूं मन भाग गया तो इसका मतलब मन आपका बड़ा चैंटिंग से, मन ज्यादा पावरफुल है चैंटिंग से, बताना जरा। फिर तो कंक्लूजन आप ये निकालोगे ना, मन ज्यादा पावरफुल है नाम से, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता, नाम ज्यादा पावरफुल है मगर नाम इतना शक्तिशाली होते भी मन भाग रहा है, तो कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये कि हम खुद भगा रहे हैं माइंड को, दूर खुद जाना चाहते हैं हम, इसलिए भाग रहे हैं। अगर हम भगवान के पास बैठना चाहेंगे तो मन की कोई मजाल नहीं है कि वो भाग जाए, भगवान पकड़ लेंगे। अगर हम ही जाना चाहते हैं तो फिर मन तो जाएगी हमारे साथ, तो प्रॉब्लम ये है। अब वो आपको लगता नहीं, चैंटिंग का हमें लगता नहीं है कि हम खुद ही भगवान को छोड़ना चाहते हैं, हम तो कोशिश करते हैं ना लाने की, मगर कहीं डीप डाउन, कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम खुद चूज कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अबे कृष्णा क्या लेना देना तुझसे, भाग्य मन, हम खुद कह रहे हैं, मानो ना मानो, वरना मन भाग नहीं सकता, मन नहीं भाग सकता। हम एनवीएस है ना भगवान से, द्वेष है हमें, इसलिए भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाए, कभी अमेरिका भाग जाएगा, कभी पता नहीं कहाँ भागता है, वो आपको ही पता है कहाँ भागता है आपका मन, जो भी है। सो ठीक, भगवान को छोड़ के एंजॉय करना चाहता है ना, ठीक है भाग गया, तो आप चूज कर रहे हो अंदर कहीं आपको खुद भी नहीं पता आप चूज कर रहे हो। प्रॉब्लम हमें इतनी हैबिट हो गई चूज करने की, भगवान को छोड़ने की, कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम भगवान को छोड़ना चाहते हैं। जब अगर आप चैंटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी ना, आपको एग्जैक्ट दिखाई दे रहा होगा कि आप चूज कर रहे हो, हम ही चूज कर रहे हैं, शुरू में नहीं दिखाई देगा आपको, जब माइंड क्लियर हो जाएगा ना, जब सारी डर्ट हट जाएगी, भगवान कह रहे ना मृत्यु सागर से निकालूंगा, भगवान ही अंदर से हमें दिखाएंगे कि देखो तुम ही चूज कर रहे हो, मेरी गलती नहीं है जो तुम्हारा मन भाग रहा है, तुम दूर जाना चाहते हो, दिखा देंगे, जिस दिन हमें दिखाई दे जाएगा हम चूज करना बंद कर देंगे, दैट्स ऑल, फिर मन लग जाएगा। सो भगवान इस तरह से अंदर से और बाहर से किसी तरह प्लानिंग कर करके हमें इस संसार से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप चूज कर लोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, चूज नहीं करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है। सो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हरे कृष्णा, कल हम और पढ़ेंगे इसको, बट कुछ पूछना कुछ कहना है, आई विल स्टॉप, कोई क्वेश्चन है अदरवाइज? क्लियर नहीं हो गया? अब निराकार है, बेकार निराकार के चक्कर में मत पड़ो, बहुत अच्छा ये स्टार्टिंग है भगवान 12th चैप्टर की। ओके, दैट्स क्लियर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।